नमस्कार, आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट किताबी कीड़ा और मैं हूं आपका होस्ट संजय गोरा। आइए पिछली एपिसोड की तरह इस एपिसोड में भी हम एक लंबी कहानी पढ़ते हैं। एक दिन सीता सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थीं। वहां उन्हें दो तोते बैठे दिखाई दिए जो बड़े ही सुंदर थे। वे दोनों पक्षी एक वृक्ष की डाल पर बैठे बैठे एक बड़ी मनोहर कथा कह रहे थे। इस पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है जानकी देवी और धन्य है श्री राम जो एक दूसरे को पाकर इस लोक में आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा, ये दोनों पक्षी मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछती हूं। ऐसा विचार कर उन्होंने सखियों से कहा, यह देखो इस पर्वत के शिखर पर जो वृक्ष है उसकी डाली पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, ये दोनों बहुत सुंदर हैं। तुम लोग चुपके से जाकर इनको पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़ कर लाईं। सीता ने उन्हें हाथ में लेकर प्यार किया और आश्वासन देते हुए कहा, देखो डरना नहीं, तुम दोनों बड़े सुंदर हो। मैं यह जानना चाहती हूं कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सीता के इस प्रकार प्रेम पूर्वक पूछने पर उन पक्षियों ने कहा, देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है जिसका नाम है रामायण। उसकी कथा मन को बहुत प्रिय लगती है। महर्षि अपने शिष्यों को रामायण पढ़ाते हैं और सदा उसके पद्यों का चिंतन करते रहते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उसकी बातें बहुत कुछ मालूम हो गई हैं। हम तुम्हें राम का परिचय देते हैं, सुनो। अयोध्या के महाराज दशरथ महर्षि ऋष्यशृंग जी को बुलाकर उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराएंगे। उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहां 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम लीलाओं का गान करेंगी। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे और राजा जनक के यहां रखा हुआ शिवजी का धनुष तोड़कर लक्ष्मी स्वरूप सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। सुंदरी, ये तथा और भी बहुत सी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुनी हैं। तुमने जो कुछ पूछा था हमने मैं बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम दूसरे वन में जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सीता के कानों में अमृत की वर्षा कर रही थीं। उन्होंने कुछ और सुनने के लिए पूछा, श्री रामचंद्र जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो, तुम्हारी बातें मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। सीता के प्रश्न सुनकर तोते की स्त्री ने समझ लिया कि ये ही जनक नंदिनी है। फिर तो वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए पंकज की शोभा धारण करते हैं, नासिका ऊंची पतली और मनोहारिणी है, दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिली हुई हैं, भुजाएं घुटनों तक लंबी और मन को लुभाने वाली हैं, गला शंख के समान है, विशाल वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित होता है, उनका कटिभाग जंघा तथा घुटने अत्यंत मनोहर हैं, चरणारविंद की शोभा वर्णन से परे है। श्री रामचंद्र जी का स्वरूप कितना मनोहर है इसका वर्णन मैं क्या कर सकती हूं। जिनके 100 मुख हैं वे भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकते। जिनकी झांकी देखकर लावण्यमयी लक्ष्मी भी मोहित हो गईं, उनका दर्शन करके दूसरी कौन स्त्री है जो मोहित ना हो। मैं श्री राम का कहां तक वर्णन करूं, वे सब प्रकार के ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। जनक किशोरी सीता धन्य हैं जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। किंतु सुंदरी तुम कौन हो जो इतने प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुनती हो। जानकी बोली, तुम जिसे जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूं। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। वे यहां आकर जब मुझे ग्रहण करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में राम को पाने का लोभ उत्पन्न कर दिया है, अतः मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थों का भोजन करो। सीता की यह बात सुनकर सुग्गी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और विनती करती हुई बोली, साध्वी हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद विचरा करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूं, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तोते ने भी यही बातें कहकर प्रार्थना की, किंतु सीता उस सुग्गी को छोड़ने के लिए उद्यत ना हुई। दोनों पक्षी बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उन्होंने बालकोचित हट के कारण उसे नहीं छोड़ा। वे वनवासी विहंगमों की हार्दिक वेदना का अनुभव ना कर सके। सुग्गी के लिए पति का वियोग असह्य हो गया। वह बोली, अरे मुझ दुखिनी को इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, अतः तुझे भी गर्भिणी की दशा में पति से विलग होना पड़ेगा। यूं कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए सुग्गी ने अपने प्राण त्याग दिए। उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके उस विमान के द्वारा भगवान के धाम को चली गई। पत्नी के वियोग में तोते ने भी देह त्याग दिया। वही इस वैर का बदला लेने के लिए अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ। इस प्रकार विदेह नंदिनी सीता के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया। तो ये थी आज की कहानी। आपने अपना बहुमूल्य समय इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो अगली मुलाकात तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।